हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 14। इस आध्यात्मिक ज्ञान करने को ग्रहण करने की क्षमता हमारे अंदर तनिक भी नहीं है। जब तक गुरु और गौरंग की कृपा नहीं हो जाती हम इस आध्यात्मिक ज्ञान का एक शब्द भी ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहकर्णललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। कल भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 13 में हमें बताया था पंचेतानि महाबाहु कारणानि निबोधमे सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। यानी कि हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम मुझसे उनके बारे में सुनो। जब इसने भगवान ने कहा था मेरे से इनके बारे में सुनो, आज भगवान उसके विषय में सुना रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे साथ साथ श्लोक का अध्ययन कीजिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधांश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। फिर से अधिष्ठानं कथा कर्ता करणं च पृथक् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। यह भगवान के शब्द हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के शब्द आपको उच्चारण करने का अवसर प्राप्त हो गया है। उत्साह के साथ इस श्लोक को रटन करने का अभ्यास कीजिए मेरे साथ। अधिष्ठानम् तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। अधिष्ठानम्, अधिष्ठान का मतलब होता है स्थान। स्थान मतलब वो प्लेटफॉर्म जिस पर रहकर आप कार्य करो, जिसके अंदर आप कौन हो, आप आत्मा हो। और प्लेटफॉर्म क्या है, स्थान क्या है, यह शरीर, जिस आत्मा को, जिस भी शरीर, जो भी कौन सा भी शरीर प्राप्त है, सबसे बड़ा कारण तो वह शरीर है ना। कैसे वह कारण है, जैसे अगर आप पक्षी हो, आपको पक्षी का शरीर मिला है तभी आप उड़ने का कार्य कर रहे हो। आप ना आत्मा बनकर आप उड़ने का कार्य इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपकी आत्मा को वह प्लेटफॉर्म मिला है, वह शरीर मिला है उड़ने वाला। आप रेंग रहे हो तो मतलब आप इसलिए, क्योंकि उस आत्मा को वह शरीर रेंगने वाले कीड़े का मिला। यदि आप स्विम कर रहे हो, मछली का शरीर यदि आपको मिला है तो फिर आप है ना समुद्र में तैर रहे हो। यानी कि वह सबसे बड़ा कारण आपके कार्य का क्या है, वह स्थान, वह शरीर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कर्ता। शरीर मिला है और उसके अंदर कर्ता कौन है, कर्ता ये आत्मा है। क्योंकि अगर शरीर होता, खाली शरीर भी मिला होता, लेकिन उसके अंदर यदि आत्मा को फिट नहीं किया गया होता फिर तो वो कार्य नहीं कर सकता। लेकिन कर्ता जो है, अब कर्ता भी लिखा है, लेकिन कर्ता जो है वो संपूर्ण केवल वही कार्य का, मतलब उस कार्य का कारण केवल वह कर्ता ही नहीं है, वह आत्मा ही नहीं है, उसके साथ शरीर भी है। शरीर क्योंकि वो उसको मिला है, अब मक्खी का शरीर मिला है तभी वो उड़ रहा है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया आत्मा भी है कारण, लेकिन उसके साथ साथ वह प्लेटफॉर्म, वह शरीर जो मिला है। अब उसके साथ क्या बोला, करणम। करणम का मतलब होता है उपकरण, यंत्र, यानी इंद्रियां। अब जितनी जितनी इंद्रियां, जैसे आपको कान मिले हैं तो आप श्रवण कर रहे हो, लेकिन अगर मनुष्य का शरीर भी किसी किसी को मिलता है लेकिन कान में श्रवण करने की क्षमता नहीं होती है तो वो नहीं सुनते हैं। आंख मिली, आंख देखने के लायक है तभी आप आंखों से देख रहे हो, और है ना बात करने के लायक है आपका मुख, आप बात कर सकते हो तभी आप, शरीर मिलना काफी नहीं है, आपकी समस्त इंद्रियां स्वस्थ हैं तभी आप वो कार्य कर रहे हो। जैसे करणम का मतलब होता है इंद्रियां, और इस इंद्रियों में सब आती है, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, सब आ जाती है। और उसके अतिरिक्त पृथक विदम, पृथक विदम मतलब विभिन्न टाइप के, क्या विविधा, नाना प्रकार के, च पृथक विद, पृथक यानी अलग अलग, चेष्टा यानी कि आपको जो शरीर मिला है उसके अंदर आत्मा डाली गई, और उसके बाद आपको अलग अलग इंद्रियां दी गई, और फिर अलग अलग सिचुएशन क्रिएट की गई। जैसे हर मनुष्य एक जैसा काम नहीं करता ना। अब मनुष्य जीवन सबको मिला, जितने भी लोग हैं उनको मिला, लेकिन उसको जैसे सिचुएशन मिली उस हिसाब से वो कार्य कर रहा है। यानी कि जैसा घर मिला वो पिछले कर्मों के अनुसार, जैसा घर मिला, जैसे माता पिता मिले, जैसे बहन भाई मिले, जैसे रिश्तेदार मिले, उसके अनुसार जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो सिचुएशन आपको कार्य करने पर बाध्य करती है। जैसे अगर आप है ना नहीं करना चाहते, जैसे मेरा बच्चा अगर माला नहीं करना चाहता लेकिन उसको माला करनी पड़ती है क्योंकि वो इस घर में पैदा हुआ है, अब इसको जाहिर सी बात है मैं छोड़ूंगी नहीं उसको जब तक माला नहीं कहेगा। तो सिचुएशन और दूसरे लोग जो आजू बाजू के हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, जो हमारे साथ होते हैं दूसरे लोग, वो भी हमें कार्य करने पर विवश करते हैं कि ये कार्य आपको करना है। जैसे कोई भक्त नहीं चाहता है कि मुझे है ना नॉन वेजिटेरियन पकाना पड़े, है ना, ये बहुत लोग की ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्योंकि उनके पति खाते हैं, कोई भक्त होती है उसके पति खाते हैं, तो विवश होकर मजबूरी की हालत में वो सिचुएशन के अनुसार उसको पक्का कर देना पड़ता है, क्योंकि वो पति है उसको। और भगवान ने कहा अपने नियत कर्मों को नहीं त्यागो, चाहे वो भौतिक लिहाज से कितना ही मतलब गृहित कर्म ही क्यों ना हो, अगर वो भौतिक लिहाज से देखने में ऐसा भी लगता है कि वो ना अच्छा नहीं है, शुभ अशुभ है, न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशल न अनुशजते, जो अपने बुरे कर्म से कोई घृणा नहीं करता है, अशुभ कर्म से कोई घृणा नहीं करता, शुभ कर्म में लिप्त नहीं होता है, बस कार्य करना है। तो सिचुएशन आपसे कार्य करवाती है जो, तो फिर यहाँ पर बताया पृथक चेष्टा, और अंतिम में बहुत सुंदर शब्द भगवान ने बताया दैवम। दैवम का मतलब होता है परमात्मा, यानी भगवान जो आपके हृदय में बैठे हुए हैं वो करवा रहे हैं। वास्तव में अगर देखा जाए ना भक्तों, तो सारे कार्यों का कारण परमात्मा ही है। परमात्मा की अनुमति के बगैर एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, तो हम जैसे लोग कोई कार्य कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया कि देखो ऐसा नहीं है कि खाली परमात्मा के ऊपर दोष भी नहीं देना है, खाली आत्मा भी नहीं कर रही है, खाली शरीर भी नहीं कर रहा है, ये पांच चीजें मिलकर कार्य कर रही हैं। ये पांच चीजें कौन कौन सी, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। अनुवाद, कर्म का स्थान अर्थात यह शरीर, कर्ता अर्थात आत्मा, विभिन्न इंद्रियां कौन सी, पांच ज्ञान इंद्रियां कौन सी, आंख कान नाक त्वचा रसना, पांच कर्म इंद्रियां, हाथ पैर जिह्वा लिंग तथा गुदा, अनेक प्रकार की चेष्टाएं यानी सिचुएशन जो भी है वो, और परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण है। तो भगवान ने कल बताया था, ये अर्जुन को भगवान क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ये सोच रहा था कि अगर मैं ये अपराध करूंगा, युद्ध करूंगा, तो सारा का सारा दोष मुझे लगेगा कि देखो मैंने अपने गुरुजनों के साथ युद्ध किया, मैंने अपने ना भीष्म पितामह के साथ युद्ध किया, इतने सारे लोगों की हत्या मेरे कारण हुई, तो कितना मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो ये युद्ध के कारण, क्योंकि आपको क्षत्रिय का शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में आप क्षत्रिय बने हो, और उसके बाद क्या है कि आपको वो सारी इंद्रियां मिली हैं कार्य करने के लिए, उसके बाद क्या मिला आपको, आत्मा मिली है, और उसके बाद क्या मिला है आपको, सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि आपको युद्ध करना जरूरी है, और भगवान आपका साथ दे रहे हैं तब आपको कर रहे हैं। तो ये सारों के ऊपर लगेगा, और जब जहां पर भगवान की समिति हो जाती है, भगवान के आदेश हो जाते हैं, भगवान का आदेश पालन करते हुए आप कुछ भी करते हो, तो वो अपराध में काउंट नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर जब भगवान आदेश देंगे ना, युद्ध में छल करने के लिए भी आगे चल के आदेश देते हैं कि भीष्म पितामह को ऐसे मारो, द्रोणाचार्य को ऐसे मारो, हालांकि युद्ध गदा युद्ध में जो है ना वो टांग ये झंगा के ऊपर वार नहीं किया जाता, लेकिन भगवान बोलते हैं अहम मंजिले भैया, यानी भीम को बोलते हैं दुर्योधन यहाँ पर मारो झंगा पे इसको, यहाँ पर क्योंकि पत्ते नहीं बांध के गया था ना, तो गांधारी का आशीर्वाद जो है वो वहां पर नहीं पहुंचा है, यहाँ पर मारोगे तो मरेगा और किधर भी मारोगे तो नहीं मरेगा। तो भगवान ने जो जो छल से भी मरवा, लेकिन भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें अपराध नहीं होता है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हें अपराध नहीं लगेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुमको युद्ध करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताएंगे इसके विषय में तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय हो। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है, शुरू शुरू में लिखा हुआ ना अधिष्ठानम, ये शरीर के लिए है, यानी शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्मफल होता है। शरीर के अंदर आत्मा को फिट किया गया तभी वो कार्य करता है। अतएव यह कर्ता कहलाता है। कौन? आत्मा कर्ता कहलाता है और शरीर क्या कहलाता है? अधिष्ठान कहलाता है। ठीक है, आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। वास्तव में करने वाला आत्मा है, क्योंकि शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं होती तो वो नहीं कर सकता कोई भी कार्य। जब शरीर आत्मा निकल जाती है तो कोई कार्य नहीं कर सकता ना। तो ज्ञाता भी वही है कि मुझे इस तरह से करना है। पिछले कर्मों के अनुसार भी उसको पता होता है कि क्या करना होता है। पिछले जन्मों के अनुसार भी हमें नहीं खबर होती, लेकिन आत्मा जो है वो ज्ञानमय है, उसे पता होता है। वो ज्ञाता भी है और कर्ता भी है। इसका उल्लेख श्रुति में है। श्रुति मतलब दूसरे दूसरे शास्त्र, जो मतलब श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अलग अलग श्रुतियों में, अलग अलग शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो इंद्रियों के द्वारा किस तरह कर्म होता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रश्न उपनिषद 4.1 में क्या लिखा है? एष ही सृष्टा, एष ही दृष्टा सृष्टा, यानी कि एष ही यानी आत्मा ही दृष्टा है। वो जानने वाला भी वही है और करने वाला भी है। और आगे वेदांत सूत्र में भी यो अतएव यानी कि वो ही जानने वाला है 2.3.18 में। आगे श्री प्रभुपाद जी बताए हैं 2.3.33 में वेदांत सूत्र में क्या लिखा हुआ है? तथा कर्ता शास्त्रार्थ वत्तवात, यानी इन श्लोकों से या इसकी पुष्टि होती है कि तथा कर्ता यानी वही करने वाला है, आत्मा करता है और वो सब मिलकर करते हैं। आत्मा शरीर जब मिक्स हो जाते हैं और इंद्रियां मिलती हैं तो अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होती है, और परमात्मा जब साथ देते हैं तो ही ये होने वाला है। तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इन श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है कि कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न विभिन्न कर्म करती है। यानी करने वाला कौन है? इंद्रियों से कार्य हो रहा है लेकिन आत्मा उनको गाइड कर रही होती है करने के लिए। आत्मा उसको सहयोग दे रही होती है। अगर आत्मा का सहयोग ना हो तो शरीर कुछ ना करे। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, यानी कि अब जो भी आप कर्म कर रहे हो उसके लिए अलग अलग कोशिश करनी पड़ती है आपको। अलग अलग कोशिशों की वजह से वो कार्य हो रहा है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, एग्जाम में आपको फर्स्ट आना है, तो उसके लिए क्या आप ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, घर में स्टडी करते हो? यानी कि गोल आपको सामने रखना है और अलग अलग कोशिशों की वजह से आप कार्य कर रहे हो। घर में है ना, सब आपको सपोर्ट देते हैं, फिर मम्मी कोई ऑटो वाला लेकर जाता है, यानी अकेले आप नहीं कर रहे होते हो। तो इतनी सारी चेष्टाएं मिलकर एक कार्य हो रहा होता है। तो अलग अलग चेष्टाएं होती हैं, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र के रूप में आसीन है। भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में, परमात्मा के रूप में, मित्र के हृदय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 61, इसी अध्याय के 18.61 में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर श्लोक का उच्चारण करते हैं। प्रियतम श्लोक है मेरा। भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। यानी कि ये जो उनकी माया है ना, उसके द्वारा वो समस्त लोगों को घुमा रहे हैं। लोग को लग रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का सहयोग जब तक ना हो तब तक तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर श्री भोपाल जी बता रहे हैं कि अतिव जो प्रत्येक हृदय में मित्र के रूप में भगवान आसीन है, तो सारे कार्यकलाप भगवान के ऊपर ही निर्भर करते हैं। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामयी होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से फंसता नहीं है। मेन यहाँ पर श्री रूपा जी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि अतएव जो इन परिस्थितियों में, यानी जो भी परिस्थिति आई है आपके सामने, उसके में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत, अब भगवान ने जो आपको आदेश दिया है, कहाँ पर दिया है? भगवान ने शास्त्र में हर एक कार्य करने के लिए आपको आदेश दिया है कि आपको कैसे कार्य करना है। हम भगवत गीता पढ़ चुके हैं, इतना 18वें अध्याय पे आ गए, और हम लोग अगर पीछे थोड़ा सा माइंड रिवाइंड करें ना, तो एक एक चीज के विषय में भगवान ने हमें बताया कि किस तरह से आपको कार्य करना है और किस तरह से फलों का त्याग करना है, किस तरह से कर्म करते रहना है और उसके आसक्ति को त्यागना है। तो ये सब अगर हम लोग इस तरह से करते हैं, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कितना बता रहे हैं, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत, यानी जैसा भगवान ने भगवत गीता में बताया, ऐसे यदि हम कार्य करते हैं तो कृष्ण भावनामय होकर कर्म करते हैं, वह किसी कर्म से नहीं बनते। यानी कि फिर वो जैसा भी काम करेगा, उसको सिचुएशन जैसी भी सामने आई है, वो कार्य करेगा तो कभी उससे बंधेगा नहीं, कभी उससे फंसेगा नहीं। अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि यदि आप मेरे आदेशों के अनुसार जैसा भी कार्य करोगे तो आपको वो कार्य नहीं फंसाएगा। जो पूर्ण कृष्ण भावनामयी है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। यानी कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामय, यानी कि पूरा कॉन्शियसनेस जिसका कृष्ण के अंदर है, जिसका एकमात्र यही इच्छा होती है कि मैं कैसे कृष्ण को खुश करूं, ये सिचुएशन को मैं कैसे, इस ड्रामे के अपने रोल को मैं कैसे अच्छे से अच्छा निभाऊं, और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं सोचता है, सिर्फ यही सोचता होता है कि मेरे को कृष्ण को खुश करना है, उसके लिए मुझे कार्य करना है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी उसको रिलैक्स करने के लिए बोल रहे हैं, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। यानी कि उनको जैसा भी सिचुएशन के हिसाब से कार्य करना पड़ता है, अगर उसकी इंद्रिय तृप्ति उसमें नहीं है, फल के अंदर आसक्ति नहीं है और कर्म के अंदर आसक्ति नहीं है, तो फिर वो कभी भी अपने कर्मों के फलों का उत्तरदायी नहीं होता है। वह सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। यानी जो कुछ भी हो रहा है वो सारा भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको कुछ भी बांधेगा नहीं, वो फंसने वाला नहीं है। आगे भगवान कहते हैं 18.15 में, शरीर वांग मनो भिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैति तस्य हेतवः। कैसे शरीरवां मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैति तस्य हेतवः। शरीर मन शरीर से, वांग मतलब वाणी से, मनो मतलब मन से, यत जो कर्म, यानी कि अब जो भी कर्म आप शरीर से, मन से या वाणी से करते हो, प्रारभते यानी प्रारंभ करता है, नर जो व्यक्ति अपने शरीर मन या वाणी से जो भी कार्य करता है, न्यायम, न्यायम मतलब उचित या न्यायपूर्ण, अगर वो न्यायपूर्ण कार्य करता है, एकदम सही कार्य करता है, वा विपरीतम यानी कि विरुद्ध मतलब बुरा कार्य भी करता है अथवा जो भी कार्य करता है, पंच एते ये पांच ही तस्य हेतवा, ये पांच कारण बनते हैं। कौन कौन से पांच कारण बनते हैं, जो पहले श्लोक में भगवान ने बताया ना, अधिष्ठानम तथा कर्ता, जो भी शरीर है उसकी इंद्रियां हैं, आत्मा है और अलग अलग चेष्टाएं हैं और परमात्मा, ये पांच कारण से आप जो भी कार्य करते हो, चाहे वो उचित हो चाहे अनुचित हो। यानी भगवान कहते हैं, अनुवाद, मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन पांच कारणों के फल स्वरूप होता है। यानी अगर आप अपराध करते हो या पुण्य करते हो, तो वो सारी चीजें आप डिपेंडेड होती हैं उस कार्य करने के लिए, खाली आप नहीं डिपेंडेड होते हो। तो जितने ये पांचों चीजें भगवान ने बताई, तो ये पांचों चीजें होती हैं। तो श्री प्रभुपाद जी सुंदर रीति से बताएंगे। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस श्लोक में न्यायम यानी उचित तथा विपरीतम यानी अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कार्य शास्त्र में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है, और अनुचित कार्य यानी सही कार्य क्या होता है, सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट, जैसा शास्त्रों में कहा गया वो सही कार्य है, और अनुचित कार्य क्या होता है, जो शास्त्रीय आदेश की अवहेलना की जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हमें बता गए ना कि अशास्त्र विधि मुत्सृज्य, के जो शास्त्र के विधियों को छोड़ देते हैं और वर्तते काम कारणात् न सिद्धे अवाप्नोति न शांतिम न पराम गतिम, कि उसको ना शांति मिलती है ना परम गति मिलती है ना सिद्धि मिलती है जो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते, लेकिन वो जो भी कार्य कर रहा है मनुष्य अपनी सिचुएशन के हिसाब से कर रहा होता है। तो फिर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अच्छा कार्य वो होता है जो शास्त्रों के अनुसार किया जाता है, और बुरा कार्य क्या होता है जो शास्त्रों के अनुसार नहीं किया जाता, किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन पांच कारणों की आवश्यकता है। अब ये पांचों ही साथ देंगे तभी आप कार्य कर सकोगे, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। लेकिन यदि हम शास्त्रों के अनुसार भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं तो वो न्यायपूर्ण होता है, वो शुभ कर्म होता है, उसका कभी भी आपको रिजल्ट खराब नहीं होता। लेकिन अगर हम शास्त्रों के अनुसार अपराध शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो वो अपराध होगा, और शास्त्र कहता है कि अपराध का दंड आपको भोगना पड़ता है। यानी कि जिस अपराध क्यों होता है, जब हम कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए अपराध होता है, भगवान की खुशी के लिए अपराध नहीं होता। और कहते हैं, शास्त्र कहता है जिन भी इतना खतरनाक नहीं है, भूत भी इतना खतरनाक नहीं है, और है ना सांप भी इतना खतरनाक नहीं है जितना कि खतरनाक आपके अपराध होते हैं, क्योंकि अपराधों का दंड आपको जरूर भुगतना पड़ता है और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।